तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे भगवद गीता। आज हम लोग भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और ये भगवद गीता हम लोग 18 सेशन में कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट कार्य है, लेकिन प्रयास करेंगे। सो पूरी भगवद गीता 18 अध्याय 18 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगी। सो आप सबका स्वागत है। आप में से जो लोग अलग अलग स्थानों से हैं और जो आगे 18 सेशन तक, मतलब 9 हफ्तों तक हम सबके साथ रहने वाले हैं, सो आप सबका स्वागत और आभार कि आप सब समय पर आए हैं। और हम आप सबको देख भी पा रहे हैं, कई अलग अलग जगहों से आप लोग जुड़े हुए हैं। सो जहां से भी आप हैं, विद्यार्थी भी बहुत सारे हैं, सो उन सबका हम स्वागत करते हैं। सो अब ये प्रारंभ करेंगे भगवद गीता का अध्ययन। आज हम लोग पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे और फिर पहले अध्याय, फिर कल दूसरे पर, फिर अगले हफ्ते तीसरे और चौथे अध्याय पर, ऐसे पूरे 18 अध्याय करेंगे। इन अध्यायों की चर्चा में हम लोग भगवद गीता के एक एक श्लोक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये केवल हम आपको ओवरव्यू देने वाले हैं, क्या है भगवद गीता में पूरा विषय क्या है, ताकि इसके बाद जब आपको कोई भी कुछ कहे पूछे तो आपको पता हो कि भगवद गीता में क्या विषय है, अर्जुन ने क्या कहा है, कृष्ण ने क्या कहा है। ये थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें हम पूरे पूरे श्लोकों को नहीं लेंगे। दूसरी चीज, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज, हम लोग इससे जीवन के उपयोगी सिद्धांतों को सीखेंगे। We will learn the principles which will help us in our devotional life, which will help us in our life. हमारे जीवन में, चाहे आप डिवोशन में हो या ना हो, लेकिन ऐसे सिद्धांत जो आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि भगवद गीता ये कोई सेक्टेरियन बुक नहीं है। ये भगवद गीता कोई एक धर्म जाति विशेष की बुक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये मानव जाति का ग्रंथ है। अगर आप मनुष्य हैं तो भगवद गीता आपके लिए है। अब आप सोच लीजिए, भगवद गीता आपके लिए है या नहीं है, ये आपको निश्चय करना है। लेकिन भगवद गीता बनी केवल मनुष्यों के लिए है। हाँ, अगर जानवर भी इसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा उनको श्लोक वगैरह बोलना। सो इसीलिए मनुष्यों के लिए बहुत सरल है। सो हम लोग अब प्रारंभ करेंगे। आपको एक पावर पॉइंट स्क्रीन पर शेयर करेंगे और फिर उसके बाद उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सो आप सब जुड़े रहिए और ध्यानपूर्वक आप अपने प्रश्न जो आपको इस दौरान आए तो वो लिखिएगा, क्योंकि हम लोग जूम पर क्लास कर रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न नहीं ले सकते। सो आप लोग उसको लिख लीजिएगा और फिर हम लोग उसकी चर्चा अंत में करेंगे। या फिर आप ये भी लिखिएगा कि आपको इसमें से कौन से पॉइंट अच्छे लगे, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, जीवन उपयोगी पॉइंट्स, या ऐसे चीजें जो आप पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं। सो आपको बहुत स्ट्राइकिंग लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो समझना चाहिए, तो ऐसे पॉइंट्स आप सब लिख लीजिएगा और प्रश्न भी लिखिएगा और उसके बाद हम अंत में प्रश्नोत्तर इत्यादि की चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। और सो हियर इज द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर आई थिंक आ गया होगा। सो आपका सबका स्वागत है और हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं भगवत गीता। सो भगवत गीता यथारूप, यथारूप मतलब जैसा है वैसा ही। भगवत गीता पढ़ने का, समझने का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि उसको यथारूप समझा जाए। नहीं तो आप पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कहा ये कहा, लेकिन भगवत गीता का सार, भगवत गीता का मर्म, कृष्ण का संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए भगवत गीता यथारूप, यथारूप मतलब जैसे अर्जुन ने समझा वैसे ही हमें समझना है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने समझा, अगर हम उसको समझ लें तो फिर भगवत गीता का सार या मर्म या उद्देश्य हमारे हृदय में स्थापित हो सकता है। और इसीलिए आज जो चर्चा हम करेंगे या इन आने वाले 18 सेशंस में जो चर्चा होगी वो चर्चा है इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित होगी ये चर्चा, जिन्होंने सारे जगत को भगवत गीता का ज्ञान दिया। आज भगवत गीता सारी दुनिया में फैली है, लोग इसका आदर करते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में अपनाते हैं और इसका श्रेय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को है, क्योंकि उन्होंने हर देश में पूरी दुनिया में इस भगवत गीता का प्रचार किया। तो इसीलिए हम उनको प्रणाम करते हुए उनकी शिक्षाओं पर आधारित इस सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। सो भगवत गीता जिसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, तो ये है क्या भगवत गीता, ये हमें पहले जान लेना चाहिए। सो भगवत गीता ये मूलभूत ग्रंथ है, फाउंडेशनल बुक। फाउंडेशनल बुक मतलब, फाउंडेशनल स्क्रिप्चर मतलब, ये ऐसा ग्रंथ है जो हमारी फाउंडेशन को, हमारी आधार को, हमारी नींव को रखता है जीवन की। तो इसलिए भगवत गीता ये कोई जाति का या किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये फाउंडेशन, हमारी नींव बनाने वाला ग्रंथ है। क्यों नींव बनाने वाला ग्रंथ है? क्योंकि गीता भगवान की वाणी है, ये भगवत गीता। भगवत मतलब भगवान की, गीता मतलब गीत या गाया गया, तो भगवान की वाणी है। तो इसलिए भगवत गीता समझने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि जिस ग्रंथ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे जीवन का आधार है, मूलभूत ग्रंथ है, फाउंडेशनल बुक है, इसके बिना जीवन अधूरा है या असंभव है कहना चाहिए मनुष्य जीवन। तो इसलिए मूलभूत ग्रंथ है। और क्यों मूलभूत ग्रंथ है, क्यों इसके बिना जीवन असंभव है? भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी, क्यों भगवान की वाणी महत्वपूर्ण है? ये जगत किसने बनाया, आपने या हमने? न आपने बनाया न हमने बनाया, ये जगत बनाया है भगवान ने, और उनकी वाणी इस जगत का आधार है। इसलिए भगवत गीता ये हमारे लिए आधारभूत है, ग्रंथ, मूल ग्रंथ है जिसको हमें जीवन में पढ़ना चाहिए। सो भगवद गीता की ये जो शिक्षाएं हैं ये पांच प्रमुख विषयों में बटी हुई है, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर और जीवा। अर्थात ये भौतिक जगत, प्रकृति मतलब ये क्या है, हम लोग जो देख रहे हैं, तारे देखते हैं, पर्वत देखते हैं, सब क्या है, कहां से आया। काल, समय चल रहा है, अभी शुरू हो गया, 7 बजे सेशन शुरू होगा, 8 बजे खत्म, ये काल आ कहां से गया समय। फिर जीव, हम सब कौन है, भगवान कौन है, कर्म क्या है, ये सब भगवद गीता के विषय है जो हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। हमारे एक आचार्य ने बहुत सुंदर तुलना की है भगवद गीता की। उन्होंने कहा कि जैसे एक आभूषण होता है, ज्वेलरी होती है, तो ज्वेलरी को एक बॉक्स में रखा जाता है, तो ज्वेलरी को बॉक्स में रखते हैं, नीचे एक उसका आधार होता है, ऊपर से एक ढक्कन होता है और बीच में उसको बड़े ध्यान से संभाल कर रखा जाता है। तो ऐसे ही ये भगवद गीता है, ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेशियस जो जेम है, या कहना चाहिए रत्न है, अनमोल रत्न, वो रखा गया है। तो रखने के लिए उसको ढक्कन भी लगाना था, उसको डब्बा बनाना था। तो जो नीचे का भाग है उसका कहना चाहिए कि मान लीजिए कि जो आधार है वो है पहले 6 अध्याय, और ऊपर के से जो ढक्कन बंद होता है वो अंतिम 6 अध्याय, और बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अनमोल रत्न, वो है बीच के अध्याय भक्ति योग पर। सो पहले 6 अध्याय कर्म योग के लिए कहते हैं, आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग पर, और बीच का अध्याय भक्ति योग। तो ये इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है, ज्वेलरी बॉक्स है आपके लिए, इसको संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन ऐसे संभाल कर रखने वाला नहीं है कि इसको लॉक में बंद कर दिया और फिर कई सालों तक बंद रहा। ये ज्वेलरी बॉक्स ऐसा है कि इसको हर रोज खोलना चाहिए, उस अनमोल रत्न को देखना चाहिए और उससे कुछ हमें जीवन में प्राप्त करना चाहिए। तो ये भगवद गीता 18 अध्यायों में बटी हुई है। भगवद गीता की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये भगवद गीता कही भगवान ने, तो भगवद गीता की पृष्ठभूमि ये है कि एक स्त्री का अपमान हुआ। देखिए, कई बार लोग जब शास्त्रों को समझते नहीं हैं, वैदिक सभ्यता को नहीं समझते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को बहुत निम्न माना जाता है, स्त्रियों का शोषण होता है, स्त्रियों को दबा कर रखा जाता है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती, और इसीलिए तथाकथित आंदोलन चलते हैं। लेकिन अगर हम वैदिक सभ्यता देखें तो स्त्रियों को सबसे ज्यादा मान दिया जाता है, और ये पूरा जो महाभारत का युद्ध हुआ एक स्त्री के अपमान के कारण, और इसकी ये बात को विदुर जी ने कहा था। जिस समय द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास हुआ, आप सब इस चित्र में देखकर स्मरण कर सकते हैं कि ये क्या दृश्य है। ये वो दृश्य है जहां द्रौपदी निस्सहाय भाव में है। द्रौपदी कौरवों के पास गई, जब दुशासन उसको बालों से खींच कर लेकर आया, पांडव हार चुके हैं जुए में उसको, और द्रौपदी को खींच कर लाया गया, और द्रौपदी पहले कौरवों के पास गई, कहा कि आपकी पुत्र वधु हूं, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन सबने सर झुका लिए। वहां पर कौन कौन थे, वहां भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, वहां पर कृपाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, सब वरिष्ठ सर झुका लिए। पांडवों के पास गई कि आप पति हैं मेरे, रक्षा कीजिए मेरी। लेकिन उन्होंने भी सर झुका लिए, कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हार चुके थे। और ऐसे समय में एक बहुत सुंदर भजन में इसका वर्णन है। ये भजन भगवान के महान भक्त बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है, और उसमें वो कहते हैं, अग्रे कुरु नाम था पांडवा नाम दुशासने नृत वस्त्र केश कृष्ण तदाक्रोशदानन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो वो कहते हैं इस भजन में कि अग्रे कुरु नाम कौरवों के पास गई हैं, पांडवों के पास गई हैं, और जब देखा कि और कोई नाथ नहीं है, कृष्णा तो कृष्णा ने देखा, कृष्णा मतलब यहाँ पर द्रौपदी, उसने देखा अनन्य नाथा और कोई नाथ नहीं है, तो उसने भगवान को पुकारा, कृष्ण को पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दुशासन साड़ी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, थक गया लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई, ये भगवान की कृपा थी और सबके सामने भगवान ने रक्षा की। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उस अपमान को होने दिया प्रारंभ में, और इस अपमान के कारण एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और इसका वर्णन दुनिया के कई देशों में किया गया है। कई कल्चर, सुमेरियन कल्चर, मायन कल्चर, उनमें पोएम्स गाई गई हैं, कविताएं बनाई गई हैं, जिसमें ये कहा गया एक स्त्री का अपमान हुआ और एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। वे लोग ये नहीं जानते कि वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वे ये जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये महाभारत का युद्ध बहुत विशाल युद्ध था, जहां भगवत गीता अब बोलने जा रहे हैं भगवान। तो वो कौन सा स्थल था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि वहां पर धर्म इस यज्ञ किए जाते थे, बहुत पावन भूमि थी, और वहां युद्ध होगा क्योंकि ये धर्म युद्ध था। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए थे और इसीलिए इस महान युद्ध को उन्होंने रचा। और उस महान युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता को कहा। प्रारंभ में ही भगवान ने ये समय क्यों चुना? भगवान कभी और भी कह सकते थे, कृष्ण कभी और भगवद गीता कह सकते थे, अकेले में जाकर अर्जुन को समझा सकते थे, लेकिन ये समय इसलिए चुना क्योंकि इस समय सबकी नजरें उस युद्ध भूमि पर थी। सब देखना चाह रहे थे क्या होगा, कौन जीतेगा, क्योंकि कौरव बहुत शक्तिशाली हैं, भीष्म हैं उनके पास, कर्ण हैं उनके पास, द्रोणाचार्य हैं उनके पास, सेना उनके पास बड़ी है, और इस तरफ पांडव भी बड़े शक्तिशाली हैं लेकिन सेना छोटी है, मगर फिर भी कृष्ण हैं, तो जीतेगा कौन? सबकी नजरें वहां लगी हैं। और ऐसे समय में भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। किस लिए? क्योंकि ये ज्ञान सारी मानवता के लिए था। भगवान चाहते थे सब सुने, सब देखें इस भगवद गीता के प्रभाव को, अर्जुन पर जो प्रभाव हुआ और भगवद गीता के कारण कैसे उसने अपने जीवन को बदल लिया, ये भगवान चाहते थे हम सबको दिखाना। और इसीलिए भगवान ने इस भगवद गीता को कहा, जिसमें 700 श्लोक हैं, और इन 700 श्लोकों में से पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, और फिर संजय ने करीब 41 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 और श्री कृष्ण ने 574 श्लोक इस भगवद गीता में कहे हैं। तो ये भगवद गीता है 700 श्लोकों वाली, ये महाभारत का अंग है। महाभारत में 100,000 श्लोक हैं, वैसे मूल महाभारत में 60,00,000 श्लोक हैं, लेकिन जो इस समय पृथ्वी पर हमारे पास महाभारत है उसमें केवल 100,000 श्लोक है। तो ऐसे ये भगवद गीता है। तो आइए अब भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि बताई कैसे ये भगवद गीता आई, अब थोड़ा सा भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवद गीता का संदर्भ कहां लिया जाए? युद्ध। कहां कहा भगवान ने? युद्ध में। तो किस चीज का युद्ध? हमारे जीवन में कौन सा युद्ध होता है? हमारे जीवन में एक हमारा युद्ध होता है जहां एक तरफ कंफ्यूजन है, भ्रांति है, दूसरी तरफ क्लैरिटी के लिए और भागना है। तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाने वाला ग्रंथ है भगवद गीता, क्योंकि प्रारंभ में युद्ध के समय में अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने सोचा मैं कैसे युद्ध करूंगा, अरे ये मेरे पितामह हैं, इनकी गोद में पलकर बड़ा हुआ हूं मैं, ये द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे धनुष पकड़ना है। ये कृपाचार्य हैं, इन्होंने हमें धर्म सिखाया है। अन्य भी मेरे भाई हैं, कोई अन्य रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, और इन सबको मार दूं मैं? अर्जुन ने जैसे ही देखा, अर्जुन भर गया भ्रांति से, बहुत कंफ्यूज हो गया अर्जुन, दुखी हो गया, समझ नहीं आया क्या करना है। और इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो एक तरफ अर्जुन जो भ्रमित है, दुखी है, विवादों में फंसा हुआ है कहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए करूं या ना करूं मन में विवाद चल रहा है उसके, या ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां दो राहे पर है, और हम सबके लिए जीवन में आता है कि हमें ये करना है या ये करना है। अर्जुन उस समय पर है, और भगवद गीता सारी भ्रांतियों को दूर करती है। मन में जितने भी आपके भ्रम हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उनको निकाल देती है, क्लैरिटी लाती है। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, प्रभाव यही है। क्या प्रभाव है? मन में एकदम क्लैरिटी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई नहीं हो रही, फोकस नहीं हो रहा, क्या करें, ये करें, वो करें, नींद नहीं आ रही, ये करें, हर समय हमारे जीवन में कंफ्यूजन है। भगवद गीता मन को स्पष्ट कर देती है, साफ कर देती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपके विचार एकदम स्पष्ट होते हैं, आपको पता होता है आपको क्या करना है। ये भगवद गीता है। और भगवद गीता में भगवान ने कैसे दिया, क्या संदेश दिया? भगवान ने जीवन का विषय लिया भगवद गीता में, और जीवन का विषय लेते हुए हमें यह समझाया कि इस जगत में भी कैसे जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान ने केवल भगवद गीता में ये बात कही है कि अरे भगवद गीता बस करो, जब धाम में आओगे वहां होगा। नहीं, भगवान ने यहां इस जगत में रहते हुए कैसे जीना है, इसीलिए भगवद गीता मैनुअल है हमारे लिए, मैनुअल फॉर द लाइफ। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदिए, उसका मैनुअल होता है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप मैनुअल चेक कीजिए, अच्छा बैटरी ऐसे लगानी है, लगा दिया, अच्छा ये ऐसे करना है, ठीक हो गया। तो भगवद गीता वो है कि भगवान ने दिया कि कैसे रहना है इस जगत में, रहते हुए समय बर्बाद नहीं करना है इस जगत में रहते हुए, तो कैसे रहना है कृष्ण बताते हैं भगवद गीता। तो ये भगवद गीता है। सो आइए अब पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। थोड़ा बहुत हम चाहते थे कि भगवद गीता की पृष्ठभूमि आपको दे दें कि भगवद गीता क्या है, क्या प्रभाव होता है। और ये जो हमने कहा है बहुत संक्षेप में कहा है, क्योंकि एक एक सेशन में हमें पूरा एक अध्याय कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं समझा सकते हैं। मगर हाँ, आप में से कई लोग पहले से इसको समझ चुके हैं और कई लोग आगे भी समझेंगे, लेकिन सार में इसको समझना जरूरी है। तो पहला अध्याय सैन्य निरीक्षण, अर्थात सेना का निरीक्षण किया जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि पहला अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और कई लोग मतलब कोई ऐसे नहीं, कभी कभी आचार्यों ने भी, बड़े आचार्यों ने भी पूर्व काल में ज्यादा महत्व नहीं दिया अध्याय को, एक को, क्योंकि उस समय उन विद्वानों के सभा में आवश्यकता नहीं रही होगी। लेकिन आज के समय में प्रभुपाद ने पहले ही अध्याय को बड़े विस्तार से समझाया। क्यों? क्योंकि ये बहुत सुंदर शिक्षाएं देने वाला है। याद रखिए, हमने प्रारंभ में कहा था कि हम केवल श्लोक या इत्यादि, बस भगवद गीता नहीं, जीवन में क्या सीखना है ये हम पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। और पहला ही अध्याय हमें बहुत से संदेश देगा जीवन के लिए, जीवन उपयोगी संदेश। तो पहला अध्याय प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। जैसे आप यहाँ इसमें देख रहे हैं कि संजय बैठे हैं और धृतराष्ट्र को भगवद गीता का ज्ञान बता रहे हैं, और धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्ति। भगवत संजय। इस पहले ही श्लोक में बहुत से मानसिकताओं को हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए किस प्रकार रहते हैं और क्यों कष्ट में रहते हैं। ये पहला ही श्लोक हमें समझा देता है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवद गीता जहां धर्म की बात होनी है उसका प्रारंभ एक अधर्मी के नाम से हो रहा है। धृतराष्ट्र उवाच, कैसे हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि धृतराष्ट्र के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी जानने की। तो भगवद गीता का प्रारंभ हमें यह सिखला रहा है कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन अगर एक जिज्ञासा है भगवान को जानने की, अपने आप को जानने की, अपने आसपास इतने कष्टों को देखते हुए उनका कारण जानने की, तो फिर भगवद गीता आपके लिए उत्तर देगी। तो इसलिए धृतराष्ट्र से ये प्रारंभ होता है। और फिर संजय के उत्तर हैं पूरे अध्याय में। ये अध्याय में 46 श्लोक हैं और इन सब में प्रमुखता हम देखते हैं, जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि कैसे ये चार भागों में बटे हैं। तो सबसे पहला विभाग हमें दुर्योधन की कूटनीति बताता है। दुर्योधन बहुत शातिर राजनीतिज्ञ था, बड़ा बुद्धि लगाकर उसे, इसीलिए इतना बड़ा वो राज्य संभाल पा रहा था। हम लोग तो केवल निंदा करते हैं, बड़ा पापी था ये था, लेकिन बुद्धि बहुत थी, गलत दिशा में थी लेकिन थी। तो दुर्योधन की कूटनीति। और फिर दूसरा है पांडवों की विजय के चिन्ह, अर्थात जहां सारी निराशाएं हों वहां एक आशा की किरण, ये उसका सार है। तो विजय के चिन्ह पांडवों के क्यों बताए गए हैं? पांडवों के विजय तो हो जाएगी नहीं, क्योंकि पांडवों में निराशा थी। निराशा किस तरह थी? उनकी सेना कम थी, उनके पास बहुत बड़े बड़े योद्धा कम थे, जितने कौरवों के पास थे उतने नहीं थे, कौरवों की सेना की तुलना में सेना कम थी, उनके पास अनुभव कम था। तो निराशा में भी कैसे आशा की किरण देखी जा सकती है, ये हमें दूसरा विभाग इस भगवद गीता का बताएगा। और तीसरा विभाग बहुत सुंदर विभाग है, जहां भगवान अपने आप को भक्त के दास के रूप में प्रकट करते हैं, ये प्रेम दर्शाते हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुर्योधन की कूटनीति है इस अध्याय में, दूसरी तरफ आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो निराश हो चुके हैं जीवन में, लेकिन वो आशा की किरण आती कहां से है? श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए प्रेम से, ज्ञान से। और फिर अंतिम विभाग इसका है जहां अर्जुन करुणा प्रकट करता है। करुणा होना बहुत जरूरी है, ये मर्सी कंपैशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हमारे अंदर ये करुणा होनी चाहिए और अर्जुन की करुणा को हम लोग इस अध्याय के अंत में देखते हैं। सो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय, तो इसमें पहले में ही जैसे हमने कहा बहुत सुंदर हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें एक ऐसा लेसन मिल जाता है जीवन के लिए जिसको हम पाकर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, और वो क्या है? आशा और संशय। धृतराष्ट्र के प्रश्न में दोनों हैं, एक आशा है और एक तरफ संशय है। हमारे जीवन में भी यही है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन हम आशा की किरण ढूंढते हैं और सदैव संशय में रहते हैं, क्या ये होगा या नहीं, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं, क्या मुझे प्राप्त होगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आशा बंधी रहती है, शायद हम होंगे कामयाब एक दिन। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न क्या हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्न में आशा और संशय। जैसे धृतराष्ट्र को संशय था कि कहीं कौरव समझौता तो नहीं कर लेंगे, लेकिन एक आशा भी थी कि हो सकता है, इसीलिए प्रश्न किया, नहीं तो प्रश्न क्यों करना है? अरे जब सब लोग सैनिक आए हैं तो लड़ने के लिए ही आएंगे, तो उनसे पूछना कि सारे लोग जब एक साथ आए तो उन्होंने क्या किया, अरे आकर लड़ेंगे और क्या करेंगे। लेकिन आशा थी कहीं ना कहीं कि हो सकता है पांडव ये राज्य छोड़ दें। पांडव कहे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। आप जानते हैं धृतराष्ट्र ने अपनी स्थिति का बड़ा दुरुपयोग किया। जिस समय ये चर्चा हो रही थी कि पांडवों को राज्य देना चाहिए कि नहीं, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हो चुका है, तो उस समय एक दूत को भेजा धृतराष्ट्र ने, किसके पास, युधिष्ठिर के पास, क्योंकि युधिष्ठिर वो जानते थे बहुत अच्छा लड़का है, कभी कुछ गलत नहीं करता। तो युधिष्ठिर के पास उन्होंने भेजा और कहा, देखो युधिष्ठिर, हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और फिर ये भूमि के लिए झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप लोग सब वन में चले जाओ, वहीं पर रहो। ऐसा संदेश भेजा धृतराष्ट्र ने। तो इस समय तक भी, युद्ध तक भी उसको आशा थी कि पांडव बड़े ही धार्मिक हैं, छोड़ देंगे राज्य के इच्छा, और इसीलिए पूछा क्या किया, और दोनों की बात की, माम कह पांडवश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब मेरे पुत्रों ने समझौता तो नहीं किया, और क्या पांडु के पुत्रों ने राज्य छोड़ दिया। सो हमारे जीवन में ये आशा और संशय ये बने रहते हैं, और भगवत गीता जब उत्तर देती है तो कोई संशय नहीं रह जाता। भगवत गीता के अंत में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। कोई संदेह नहीं है मुझे, कोई संशय नहीं है, क्या करना है बहुत स्पष्ट हूं मैं। तो इसीलिए आशा और संशय के बंधन से हमें बाहर निकलना है। दोनों बंधन में डालते हैं, आशा भी बांध कर रखती है इस जगत से और संशय भी बांध कर रखता है। हमें आशा होती है इस जगत में आनंद पाने की और संशय होता है भगवान के शब्दों पर। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमें उल्टा होना चाहिए। हमें इस जगत की चीजों पर संशय होना चाहिए और आशा बनाए रखनी चाहिए भगवान के शब्दों पर, भगवान के वचनों पर, कृष्ण के वचनों पर, भगवत गीता पर। लेकिन हमारा आशा इस जगत से है और संशय भगवान पर है। इसलिए भगवत गीता हमें सिखलाती है घूमना है, ये नहीं करना है। तो धृतराष्ट्र ने पुत्रों के प्रति पक्षपात किया। उस समय संजय ने बहुत अच्छी बातें समझाई थी। संजय ने पहले भी, विदुर ने पहले भी बहुत कुछ समझाया था। जैसे हम बता रहे थे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था या प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय जब एक बार हो गया और बहुत घबरा गए थे धृतराष्ट्र, उन्होंने विदुर को बुलाया, विदुर क्या हो रहा है बताओ। तो विदुर ने कहा, महाराज विनाश होने वाला है, एक स्त्री का इतना भारी अपमान हो गया है इस सभा में, ये विनाश होगा, आप रोकिए इसको। तो एकदम उनके मन में एकदम भय आ गया, उन्होंने कहा वापस कर दो, पांडवों का जो भी धन लिया है, जो भी राज्य लिया है, वापस कर दो, वापस कर दिया। तो थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र के हृदय में अच्छी बातों का प्रभाव हो गया। लेकिन ये किस प्रकार था, आकाश में बिजली चमकने के प्रकार। आकाश में जब बिजली चमकती है, आती है और तुरंत गायब हो जाती है, बनी नहीं रहती है। इसी तरह धृतराष्ट्र का हृदय भी उन बादलों की तरह था, जहां उपदेश, अच्छा ज्ञान आया, बिजली की तरह आया और चला गया, फिर से वो गलत काम में लग गया। और क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता, कभी हम कुछ सुनते हैं, कभी भगवद गीता, कभी और अन्य अच्छे उपदेश, हमें लगता है हाँ यही जीवन है, लेकिन थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद वही हमारी बुरी आदतें आ जाती हैं, धृतराष्ट्र। तो इसीलिए बारंबार इस ज्ञान को सुनकर जीवन बदलना जरूरी है। धृतराष्ट्र ने भी सुना लेकिन उसने जीवन नहीं बदला। ज्ञान धृतराष्ट्र को भी था लेकिन धृतराष्ट्र ने उसका पालन नहीं किया। आप सबसे हमारी विनती है कि धृतराष्ट्र मत बनिए, ज्ञान लीजिए, भगवद गीता समझिए और उसको जीवन में अपनाइए, तब भगवद गीता सुनने का लाभ होगा। तो अब संजय उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो संजय के उत्तर क्या है? संजय का उत्तर है कूटनीति या करुणा। कूटनीति एक तरफ है दुर्योधन की, दूसरी तरफ करुणा है अर्जुन की। और इस संजय के इस अध्याय के जो उत्तर हैं वो उसी को प्रकट करेंगे। तो संजय ने जब उत्तर देना शुरू किया तो संजय ने बताया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। किस लिए? द्रोणाचार्य को क्रोध दिलाने के लिए। द्रोणाचार्य गुरु है, लेकिन जब दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने सोचा था ये वन में रहने वाले लोग कौन होगा इनके साथ में, लेकिन इतनी बड़ी सेना देख ली, दुर्योधन भी थोड़ा सा डर गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमूम। यह आचार्य देखिए देखिए पांडुपुत्रों को इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है। और फिर उनको क्रोध दिलाने के लिए वो एक शब्द कहता है कि कौन कौन है इस सेना का नायक, इसके सबसे आगे कौन है। तो वो कहते हैं द्रुपद पुत्रेणा, ये इतनी बड़ी सेना जो है उसका नायक है द्रुपद पुत्र। तो क्रोध दिला रहे थे क्योंकि द्रुपद से थोड़ी बहुत शत्रुता हो गई थी द्रोणाचार्य को, या कहना चाहिए कि वो मित्रता करना चाहते थे लेकिन द्रुपद ने की नहीं और आगे चलकर बहुत उसका नुकसान हुआ। सो द्रोणाचार्य की महानता क्या थी? द्रोणाचार्य की महानता थी कि जब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, सब जानते थे कि इनका जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है, यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो हाथ जोड़कर जब द्रोणाचार्य के पास पहुंचा कि हे द्रोणाचार्य मुझे सिखाइए तलवार कैसे चलानी है, क्योंकि अंतिम युद्ध में मैं तलवार से आपका सर काटूंगा। द्रोणाचार्य की महानता देखिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं नहीं सिखाऊंगा ये मुझे मार डालेगा, उन्होंने उसको सिखाया। आज के समय में कोई भी कह सकता है मूर्खता है ये, महानता नहीं है द्रोणाचार्य की, अरे जब पता था मारने वाला है तो मत सिखाते। नहीं, ये महानता है क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे लोग शरीर को नहीं आत्मा को स्वीकार करते हैं और वो जानते हैं आत्मा को मारा नहीं जा सकता और ये शरीर को तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है, तो फिर किस चीज के लिए भय, किस चीज के लिए आसक्ति। तो ये द्रोणाचार्य की महानता थी। तो उनको क्रोध दिलाने के लिए गए हैं और उद्देश्य क्या था दुर्योधन का द्रोणाचार्य को क्रोध दिलाते हुए, कि किसी तरह वो बस युद्ध के लिए बहुत तीव्र हो जाएं। लेकिन उसका भाव ये था कि अंदर हृदय में डर था, भय छुपा हुआ था और उस छुपे हुए भय को दबा दबा कर वो द्रोणाचार्य को क्रोध दिला रहा था। तो ऐसे दुर्योधन की कूटनीति को हम लोग इस विभाग में देखते हैं प्रारंभ में, भगवद्गीता के पहले अध्याय के प्रारंभ में, जहां वो पांडव सेना का वर्णन करता है। तो क्यों कर रहा है पांडव सेना का वर्णन? कि अरे ये तो हमारी सेना बहुत अच्छी है, भीष्म के द्वारा रक्षित है, इनकी भीम के द्वारा रक्षित इतनी नहीं है। क्यों? अपने भय को छुपाने के लिए। दोनों सेनाओं की वो तुलना कर रहा है, अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। ये सारी एक मानसिकता, गलत मानसिकता है जिससे वो अपनी कूटनीति को प्रकट कर रहा है। अर्थात दुर्योधन ये तो देख रहा है कि बाहरी दृष्टि से क्या है, लेकिन आंतरिक विकास को नहीं देख रहा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए कि हमारे जीवन में केवल बाहरी चीजों का होना पूर्ण नहीं है, अंदर का विकास भी बहुत आवश्यक है। सो जब हम केवल बाहरी चीजों को देखते हैं, बाहर बाहर देखते हैं, तो हाँ कुछ लोगों की मदद करना, कुछ सेवाएं करना, कुछ अच्छे काम करना सीख लेते हैं, लेकिन जब अंदर देखते हैं तब हम अपनी प्रगति को देखते हैं, अपने सुधार को देखते हैं। इसीलिए यहां लिखा गया है, आप देख सकते हैं, अंदर देखें व सुधार करें। सो हमें अंदर देखकर अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करना है, सुधार लाना है, जो दुर्योधन नहीं देख पाया। दुर्योधन केवल देख रहा, अरे पांडुपुत्र है, द्रोणाचार्य ने गलती की, लेकिन वो देख नहीं पाया कि ये मेरे अंदर कितना दोष है, क्या मैं अपने आप को सुधार रहा हूं। सो हमें जीवन में इस चीज को बड़ा ध्यान देना चाहिए। बाहर हम देखते हैं, जैसे हम बचपन में सुनते थे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम दूसरों को जीतना चाहते हैं लेकिन उससे पहले खुद को जीतिए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को कहते हैं, हिरण्यकश्यपु क्या था, हिरण्यकश्यपु पूरा ब्रह्मांड जीत चुका था लेकिन उसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता। सो हमें जीवन में दो युद्ध करने होते हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। जब अंदर हम मजबूत होते हैं, अंदर का युद्ध जीत जाते हैं, बाहर का युद्ध जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर गुणों को लाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दुर्योधन देख नहीं पाया और दुर्योधन ने उसको पालन नहीं किया जो कि पांडवों ने किया। और यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोग देखते हैं कि गुरु के पास जाने का सही मार्ग, सही विधि क्या है। एक दुर्योधन है, दूसरी और युधिष्ठिर है। तो कैसे दुर्योधन गया, किस भाव से गया? भगवद गीता के इस विभाग में लिखा है कि दुर्योधन एक राजा की तरह गया, आदेश देने गया, गलती निकालने गया। तो इस भाव में गुरु के पास गए, देखिए आपकी गलती है, आपने ये सब किया है और आगे नहीं करना, ये सब आदेश देने गया राजा की तरह, कोई नम्रता नहीं। दूसरी और युधिष्ठिर का उदाहरण है गुरु के पास जाने की विधि का। सो हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवद गीता, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अंदर के गुणों को विकसित करना कौन करेगा? कौन आपकी कमियों को बताएगा? कौन बताएगा कि ये आपके लिए आवश्यक है? वो है गुरु। तो इसीलिए अंदर के विकास के लिए गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है। तो दुर्योधन लेकिन उस भाव से नहीं गए, दुर्योधन तो आदेश देने गए। मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हो ज्ञान देने और जाके बोलते हो थोड़ा ज्ञान सिखाओ मुझे, तो ऐसे ज्ञान नहीं आता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में ही कहते हैं 4th अध्याय में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिनः। कि आपको ज्ञान चाहिए तो आप गुरु के पास जाइए। कैसे जाइए? नम्रता से, जिज्ञासा लेकर आप गुरु के पास जाइए। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी चाहिए, गुरु के पास जाने की विधि। तो दुर्योधन गया गलत तरीके से, सही तरीका क्या है? इसको युधिष्ठिर ने सिखलाया। क्या हुआ? युधिष्ठिर युद्ध, अभी भगवत गीता कह दी भगवान ने, अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने और सबने देखा अचानक युधिष्ठिर की ओर, और युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने दस्ताने निकाल दिए, उन्होंने अपना कवच खोल दिया, उन्होंने अपने जूते इत्यादि सब निकाल दिए, अपने जो धनुष इत्यादि जो था साइड में रख दिया और नंगे पांव भागे कौरवों की ओर। सब देख रहे क्या हुआ क्या हुआ, रोक रहे हैं भीम, रोक रहे हैं नकुल, सहदेव रोक रहे, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे। और अर्जुन कृष्ण की ओर देख रहे हैं, भाई क्या हुआ ये? और कृष्ण मुस्कुरा रहे, चिंता नहीं करो। तो युधिष्ठिर गए ऐसे और वहां जाकर उन्होंने बड़ी नम्रता से प्रणाम किया भीष्म को, और उन्होंने भीष्म से हाथ जोड़कर कहा कि हे भीष्म देव, हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर पागल हो गए, शंख बज चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है, ये क्या बात कर रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, देखिए इस युद्ध में जब तक आप जीवित हैं हम जीत नहीं सकते, और आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मरेंगे नहीं, तो आप मरेंगे नहीं हम जीतेंगे नहीं, फायदा क्या युद्ध करने का जब हमें पता है हम हारने वाले हैं। तो भीष्म देव समझ गए कि युधिष्ठिर दरअसल उनको समझा रहे थे कि भीष्म देव आप इतने बड़े महाजन होकर भी अधर्म की तरफ है। तो भीष्म ने कहा, चिंता नहीं करो, समय आने पर मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि कैसे मुझे मारना है। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है हम युद्ध करते हैं, आशीर्वाद दीजिए। तो क्योंकि उन्होंने चरण स्पर्श किए थे जाकर, आप देखिए अगर कोई आपके भी आकर चरण स्पर्श करे मुंह से एकदम आशीर्वाद निकलता है। तो उन्होंने चरण स्पर्श किए और भीष्म के मुख से निकला विजयी भव। शत्रु जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, अभी तीर चलाने जा रहे हैं उसके ऊपर, और उसको भीष्म कह रहे हैं विजयी भव। युधिष्ठिर गए द्रोणाचार्य के पास, बड़ी नम्रता से प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव, कृपाचार्य ने कहा विजयी भव, शाल ने कहा विजयी भव, जिनके पास गए उन्होंने कहा विजयी भव, दुर्योधन को एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा विजयी भव, तुम्हारी जीत हो। क्यों? क्योंकि उसने गुरु के पास जाने की सही विधि नहीं सीखी, उसने नम्रता नहीं सीखी, उसने ये नहीं सीखा कि हमेशा पाने वाले का हाथ ऐसे नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो ऐसी नम्रता, ऐसी जिज्ञासा और सेवा का भाव, ये हमें सही ज्ञान लेने के लिए तैयार करता है। तो युधिष्ठिर ने जब कवच निकाला या दस्ताने निकाले, सब रख दिए, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि गुरु के पास जब जाएं तो अपने अहंकार के कवच को निकाल के जाएं। गुरु के पास जब जाएं तो कोई बहुत बड़ा अपनी प्रसिद्धि या अपना ये सब लेकर नहीं जाएं। गुरु के पास जैसे चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख जानी, गुरु सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। और फिर उन्होंने कहा बस हरे कृष्ण महामंत्र करो, कीर्तन करो, इसीलिए मैं कीर्तन कर रहा। तो वो दिखला रहे हैं कि कैसी विधि हमें होनी चाहिए, और ये यहाँ हम भगवद गीता के इस अध्याय में, इस विभाग में सीखते हैं। और फिर आगे चले भगवद गीता में, तो अब भगवद गीता में हमने पहले देखा कि प्रश्न हुए, धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया और फिर उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर में बताया कि कैसे कूटनीति कर रहा है दुर्योधन, और अब वो बता रहे हैं, विजय के चिन्ह दिखा रहे हैं कि देखिए ये जीतने वाले हैं ये लोग। कैसे? क्योंकि बुराई पर सदाचार की सदैव जीत होती है, अच्छे आचरण की, अच्छाई की बुराई पर सदैव जीत होती है, बुराई सदैव परास्त होती है। तो अब संजय एक छुपे हुए तरीके से बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भई आपके तो सारे पुत्र हारने वाले हैं। तो कैसे? सबसे पहले उन्होंने बताया कि शंख बजे, जब दुर्योधन ऐसे बात कर रहा था तो भीष्म ने देखा लग रहा है डर रहा है, तो ठीक है इसका डर दूर करने के लिए मैं शंख बजाता हूं। तो भीष्म ने अपना शंख बजाया, लेकिन भीष्म के शंख के बाद ही जैसे ही शंख बजे तो उधर से भी बजने हैं शंख। आप देख रहे हो चित्र में कृष्ण अर्जुन दोनों शंख बजा रहे हैं, तो उन्होंने भी शंख बजाए। लेकिन वहां पर कहा गया भगवद गीता में कि जब इन्होंने शंख बजाए तो जितने भी कौरव थे उनके सारे हृदय विदीर्ण हो गए, घबरा गए सबके हृदय में, ये क्या हो गया। जब भीष्म ने शंख बजाया तो पांडवों के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई घबराया नहीं। तो इसीलिए यहां देखिए कि पांडवों की जो शंख ध्वनि केवल मात्र थी वो विजय का सूचक था, और भीष्म की शंख ध्वनि ये पराजय का सूचक था, क्योंकि किसी के हृदय में उत्साह नहीं आया। पास में खड़े हुए दुर्योधन के भी हृदय में उत्साह नहीं आया। तो ये भीष्म की शंख ध्वनि का था। तो पहला चिन्ह है विजय का, और ये हम जान लीजिए कि भगवद गीता हमें ये सिखला रही है प्रारंभ से ही कि जीवन अच्छा जीना है। हो सकता है हम लोग देखें कि कभी कभी बुरे लोग बड़ा अच्छा जीवन जी लेते हैं, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है, लेकिन ये बात याद रखिए कि सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, सदाचार ही जीतता है अंततः। और ना भी हो प्रारंभ में, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जीवन में गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे यहां पर शंख बजाइए एक चिन्ह है। तो कौन कौन से शंख हैं जिनका वर्णन भगवद गीता में हुआ? तो श्री कृष्ण के शंख का वर्णन है जिसका नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का वर्णन है जिसका नाम है देवदत्त, युधिष्ठिर के शंख का वर्णन है जिसका नाम है अनंत विजय, अनंत विजय राजा, तो युधिष्ठिर का है अनंत विजय, भीम का पौंड्र, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्प का। तो ये सारे शंख बजे, ये पांडवों के शंख, दिव्य शंख कहे गए। शंखो दिव्यम, दिव्यम मतलब इसकी ध्वनि दिव्य थी और यही सूचित कर रही थी कि ये जीत जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण लक्षण जीत का या पांडवों की विजय का चिन्ह थे श्री कृष्ण की उपस्थिति। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और कृष्ण के जो नाम है और गुण है एक ही समान है। तो अर्थात कृष्ण ऋषिकेश मतलब वो सभी के ऊपर, सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, कौरवों के भी पांडवों के भी। इसीलिए जहां वो हैं, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, जिनके पक्ष में भगवान है उनकी जय तो निश्चित है। और ये केवल पांडुपुत्रों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इसीलिए अपने पक्ष में कृष्ण को लीजिए। जैसे जब अर्जुन गए थे युद्ध के पहले श्री कृष्ण के पास ये कहने के लिए कि आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए, दुर्योधन भी गए। श्री कृष्ण सो रहे थे उस समय, तो अर्जुन नम्रता से उनके पांव की ओर खड़े हो गए कि उठने का इंतजार करें, लेकिन दुर्योधन अहंकारी उस सर की तरफ खड़ा हो गया, मैं क्यों पांव की तरफ खड़ा हूं। और फिर जब भगवान की आंख खुली, स्वाभाविक है कोई लेटा है तो आंख खुलती है तो पहले जो पांव की तरफ है दिखाई देते हैं, तो अर्जुन दिखे, तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या बात है, मांगो, क्या मांगना है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आया हूं आपको युद्ध के लिए आमंत्रण देने। तो तब तक दुर्योधन ने कहा एक मिनट, मैं पहले आया था, पहले मुझे बताना है। तो भगवान ने कहा कि देखो दो चीजें हैं, एक तरफ मेरी सेना है जो युद्ध करेगी, और दूसरी तरफ मैं हूं अकेला जो युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस केवल रहूंगा। सो अब आप चुनो क्या चुनना है। तो अर्जुन छोटा है, उसको पहले चुनने दो। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं तो आप मेरी तरफ रहिए, बस आपकी सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया, क्योंकि अगर उसको कहा भी जाता पहले मांगने को तो वो भी वही मांगने वाला था कि मुझे सेना दीजिए, आप नहीं चाहिए। देखिए ये हमारी मानसिकता है, हम अगर जीतना चाहते हैं इस जगत में, सदा हम सफल होना चाहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत चाहते हैं, तो हमें कृष्ण को लेना है। लेकिन हम दुर्योधन के भाव में हैं, हमें लगता है कृष्ण नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें दिख रही हैं वो ले लें। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को लिया, और अर्जुन कृष्ण को लिया, और पांडव सेना जो थी कृष्ण की वो चली गई इनके साथ, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, अरे जिनके पास श्री कृष्ण है, तो इसीलिए अपने जीवन में कृष्ण को लीजिए, प्रार्थना कीजिए कृष्ण से कि आप हमारे जीवन में बने रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप हैं तो वैसे ही सब कुछ आ जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, बुद्धिमान वो नहीं है जो छोटी छोटी चीजों को पकड़े, बुद्धिमान वो है जो एकदम सोर्स को पकड़ ले बस। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, करोड़ करोड़पति व्यक्ति है, और आप उसके कोई एक ऑफिस में काम करने वाले प्यून के पीछे भाग रहे हो, अरे यार कुछ करा दे, कुछ पैसा दे दो कुछ, और लेकिन आपके पास अवसर है कि एक दिन आपको उससे मित्रता हो जाती है और उसके वो आपसे मिल जाते हैं, तो फिर आपके लिए तो वो ज्यादा अच्छा है कि प्यून से नौकरी, प्यून से मित्रता ज्यादा अच्छा है। सो इसी तरह जिनके पास कृष्ण है सारी चीजें अपने आप आएंगी, हमें चिंता ही नहीं करना है, केवल कृष्ण को पकड़े रहना है। एक को पकड़िए बाकी सारी चीजें आपके साथ होंगी, एक को छोड़ दीजिए सारी चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। और इस जगत में हम यही देखते हैं, ये जगत क्या है, चीजें मिलती हैं चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं, कभी खुशी कभी गम। ये क्यों है इस जगत में कभी खुशी कभी गम, क्योंकि कृष्ण नहीं है। जहां कृष्ण है वहां ना खुशी है ना गम है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए ऋषिकेश की उपस्थिति, कृष्ण की उपस्थिति, ये और एक लक्षण है पांडवों की जीत का, और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण जिसका वर्णन भगवद गीता में किया गया। कपि ध्वज, अर्जुन को कपि ध्वज कहा जाता है, जिनके ध्वज पर हनुमान जी हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी को, जब रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की तो हनुमान जी ने मदद की थी, और वही हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर, कपि ध्वज अर्जुन की ध्वजा पर हैं, ये बताने के लिए कि विजय केवल पांडवों की होगी, इसलिए वह हनुमान जी का नाम है। वैसे बहुत सुंदर कथा है, समय की कमी के कारण बड़े संक्षेप में बताते हैं कि भीम एक समय जा रहे थे कुछ फूल लेने के लिए, कमल लेने के लिए, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, और बीच में एक बूढ़ा बंदर पड़ा हुआ मिला। भीम क्रोध में आ गए, अहंकारी हो गए, भीम ने कहा हटो बीच में से। उसने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, बूढ़ा बंदर हूं, शक्ति नहीं है, आप ऊपर से कूद के चले जाओ। मैंने कहा नहीं, किसी के ऊपर से कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए कूद नहीं सकते, लांग नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा काम करो, मेरी पूंछ हटा दो, चले जाओ वहां से। तो भीम ने सोचा एक बंदर की पूंछ है, तो हाथ भी पूरा नहीं लगाया था, ऐसे दो उंगली, एक उंगली और एक अंगूठे से सोचा कि इसको हटा दे, हटी नहीं। फिर हाथ से हटा दे, हटा नहीं, दोनों हाथ लगा दिए हटी नहीं, पूरी शक्ति लगा दी, पूंछ नहीं हिला पाए। हनुमान जी ने इतना अहंकार तोड़ दिया कि अरे 10,000 हाथियों का बल और एक पूंछ नहीं हिला पा रहे। तो ऐसे जब उस समय ये प्रसंग हुआ था, भीम ने क्षमा याचना की तो प्रसन्न हुए थे हनुमान जी, तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा था। तब उन्होंने कहा था हनुमान जी ने भीम से कि जब युद्ध होगा तो मैं अर्जुन के साथ रहूंगा। तो ये यहाँ पर और एक लक्षण है, और बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण था वो रथ, जो रथ अर्जुन को मिला था ये अग्नि के द्वारा दिया गया था रथ, और वो ऐसा रथ था जो चारों दिशाओं में विजयी होगा। तो ये कुछ लक्षण भगवद गीता में बताए अर्जुन के या पांडवों की विजय के। सो अभी तक हम लोग भगवद गीता के पहले अध्याय में ये सुन चुके हैं कि कैसे प्रश्न हुआ, प्रश्न के उत्तर में कूटनीति बताई, और फिर अब कूटनीति बताते हुए फिर पांडवों की विजय के चिन्ह दिए। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण भाग आता है भगवद गीता का, और वो है भक्त वत्सल श्री कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण भाग, जहां बताया गया कि भगवान कैसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, वहां स्थापित करो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आए हैं इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ युद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए, मैं सबको देखना चाहता। आदेश दिया, मान लीजिए, क्योंकि वो रथ पर हैं और श्री कृष्ण सारथी बने थे। तो भक्तवत्सल क्या रूप है कि वहां कृष्ण दिखला रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सारी चीजों के स्वामी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए। श्री कृष्ण का प्रेम है ये, अपने भक्त की सेवा करने में उनको आनंद आता है। यहां एक बड़ा सुंदर चित्र आप देख रहे हैं, जब सुदामा आए श्री कृष्ण के घर द्वारिका में, तो सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे, कपड़े भी फटे हुए, खाने को कुछ नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका स्वागत कैसे किया, स्वयं उनके चरणों को धोया। तो ये भक्त वत्सल रूप अब हम भगवद गीता के इस भाग में देखते हैं, जहां वो अर्जुन के सारथी बने हैं और आदेश ले रहे हैं अर्जुन से कि हे कृष्ण लेकर चलो बीच में, मैं देखना चाहता हूं। तो वत्सल, भक्त वत्सल क्यों रूप है, क्योंकि एक वत्स होता है, वत्स मतलब गाय का बछड़ा। तो जो वत्स होता है वो गाय से बहुत प्रेम करता है और गाय भी उससे बहुत प्रेम करती है। हमें नहीं पता आप में से कितने लोगों ने गाय पाली है, लेकिन जब गाय का बच्चा होता है तो गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे भागती है, कोई अगर उसके पास आता है तो उसको मारती है, नहीं मेरा बच्चा है इसको कुछ नहीं करना, हमेशा रक्षा करती है। भगवान ऐसे है। और वत्स कैसा होता है, आप बछड़े को छोड़ दीजिए वो हजारों गायों में जाकर ढूंढ लेगा अपनी माँ को। तो भक्त कैसे होते हैं, वो कृष्ण को कहीं भी ढूंढ लेते हैं। और भगवान कैसे हैं, माँ की तरह हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। ये हमें जानना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन, हमारा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। और ये भक्त वत्सल रूप इस भगवत गीता में अब प्रकट होता है, जहां भगवान रथ को लेकर जा रहे हैं। वैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण की एंट्री इस पहले अध्याय में है, और बड़ी डैशिंग एंट्री की है श्री कृष्ण ने, हीरो की तरह, जैसे हीरो एंट्री करते हैं। जैसे आप लोग पिक्चरें देखते हैं तो पिक्चरों में हीरो की एंट्री कैसे होती है, जब हीरो आने, ऐसे नहीं होता कि अचानक आ गया पता नहीं चला, रहे अच्छा ये हीरो है। हीरो की एंट्री होती है, अचानक कार आके रुकेगी, ची, उसके पहले पहिए दिखाई देंगे कार के, घूम रहे हैं, फिर कार आकर रुकेगी, फिर दरवाजा खुलेगा, फिर केवल जूते दिखाई देंगे, फिर ऊपर कपड़े, फिर हीरो की एंट्री। ऐसे ही होता है ना, आज भी पता नहीं, पहले तो ऐसे ही होता था, आज पता नहीं कहीं से टपकते होंगे क्या होगा। तो कृष्ण की भी एंट्री ऐसे ही है भगवद गीता में, ततः श्वेतेर हये युक्ते, तो वहां वर्णन किया गया है भगवद्गीता में कि कैसे आ रही है एंट्री, तो बताया पहले घोड़ों का वर्णन किया, रथ के पहियों का वर्णन, घोड़ों का वर्णन हो रहा है कि यहाँ घोड़े हैं, सफेद घोड़े लगे हुए हैं रथ पे, ऐसा रथ है, और फिर श्री कृष्ण का वर्णन है। तो भक्त वत्सल श्री कृष्ण का रूप यहाँ देखने मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण अपने भक्त से आदेश लेते हैं और रथ को उनके बीच ले जाते हैं। और अब क्या होता है, अब भगवान ले गए रथ को बीच में, और कहाँ लेकर गए, अर्जुन ने नहीं कहा था कि एकदम भीष्म द्रोणाचार्य के सामने, भीष्म के सामने ले जाओ, लेकिन एकदम उनके सामने ले गए और कहते हैं देखो भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, तुम देखना चाहते थे ना, देख लो। तो जब अर्जुन देखते हैं, अर्जुन के हृदय में करुणा भर आती है, अर्जुन बिल्कुल संभाल नहीं पाते अपने आप को। क्या देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मेरे संबंधी खड़े हैं, मेरे वरिष्ठ जन खड़े हैं वहां पर, मेरे मित्र जन खड़े हैं वहां, वो देख रहा हूं मैं, उनके साथ खेला था, अरे और यहां मेरे गुरु जन खड़े हैं। अर्जुन ने सबको देखा और इसके कारण अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए, अर्जुन के शरीर कांपने लगा, अर्जुन के अंदर कोई ताकत नहीं रही खड़े रहने की, उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष भी छूट गया। अर्जुन कहता है, तो अर्जुन को लगा कि क्यों मुझे युद्ध करना चाहिए, तो इसलिए ये जो अंतिम विभाग है भगवद गीता का, ये हमें सिखलाता है बहुत महत्वपूर्ण बातें। क्या बातें सिखलाता है, कि हमारे जीवन में हम जो चुनाव करते हैं, जो चॉइसेस बनाते हैं, वो हमारी फ्री विल पर आधारित है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, उसके आधार पर हम चॉइस करते हैं जीवन में, और उसका जो प्रभाव होता है उससे हमारा भाग्य या हमारे डेस्टिनी बनती है। और डेस्टिनी क्या है, ये हमारा भाग्य क्या है, हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का फल है, बस हमने जो निर्णय ले लिया। और यहां अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा, युद्ध करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो सोच रहा आगे क्या होगा, और क्या क्या सोच रहा है अर्जुन। अर्जुन सोचता है युद्ध करूं या शांति रखूं। सो अर्जुन ये दिखला रहा था, प्रभुपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में, कि अर्जुन के अंदर बहुत आत्मसंयम था, पूर्ण रूप से वैराग्य था अर्जुन के अंदर, बड़ा साधु स्वभाव था उसका, क्षमा करना चाहता था और पारिवारिक परंपराओं को बचाना चाहता था अर्जुन। ये सारे कारण उसने इस अंतिम भाग में भगवद गीता के दिए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्या करेंगे युद्ध करके, क्या होगा, सब मारे जाएंगे। तो अर्जुन बहुत एक अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण कर रहा था किस चीज का, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अपनी चॉइसेस वो बना रहा था जिससे उसकी डेस्टिनी बनेगी। सो प्लीज इस बात को समझिए बहुत अच्छी तरह से, कि हमें कैसे चॉइसेस बनानी है जीवन में, हमें कैसे डेस्टिनी बनानी है जीवन में। अगर डेस्टिनी बनानी है तो हमारी चॉइसेस करेक्ट होनी चाहिए, चॉइसेस करेक्ट होनी है तो हमारी फ्री विल का सही उपयोग होना चाहिए, और अगर फ्री विल का सही उपयोग होना है तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि कैसे फ्री विल को उपयोग करना है। जैसे आपके हाथ में कोई चीज दे दी जाए और आपको पता ही नहीं है कि कैसे चलाना, आपके हाथ में एक बम दे दिया जाए, आपको पता नहीं है कैसे चलाना है, और आप कुछ उसको इधर उधर खोल दें, धड़ाम वहीं फट जाए। तो इसी तरह ये जो भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है, हमें पता होना चाहिए इसका क्या उपयोग करना है। स्वतंत्रता मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहे करूं, स्वतंत्रता मतलब ये है कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरी डेस्टिनी सही बने, ये स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्वतंत्रता को हमें उपयोग करना है, और अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को सही तरह से कर सकते हैं। अर्जुन भ्रमित हो गया, एक तरफ चॉइस है, दूसरी तरफ कर्तव्य है योद्धा के रूप में, उसके लिए करे या ना करे कर्तव्य, या क्या कर्तव्य होना चाहिए उसका। वैसे हमें जानना चाहिए कि हमारी चॉइस ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो कर्तव्य तब तक हमारे लिए जरूरी है जब तक उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो। ऐसे कर्तव्य जिनका प्रभाव अच्छा ना हो उसको करके क्या लाभ है। इसलिए जीवन में जानना चाहिए कि हमारे चुनाव करने की जो शक्ति है उसका सदुपयोग हम लोग करें। तो अंत में, अध्याय के अंत में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें क्षमा कर देना चाहिए या हमें क्षमा करके पाप मुक्त रहना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, तो वो कारण देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए अगर हमने सबको मार दिया इस युद्ध में तो जो स्त्रियां हैं उनका रक्षण कौन करेगा, सारी स्त्रियां ऐसे ही रहेंगी तो फिर उससे गलत कार्य होंगे, उससे वर्ण संकर मतलब ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो अच्छे संस्कारों से नहीं हुई है, तो फिर उससे क्या होगा, उससे सारा अच्छे कार्य बंद हो जाएंगे। हाँ, पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियः, जितने हमारे पितर हैं उनको जो हम क्रियाएं करते हैं वो सब बंद हो जाएंगी, हम सब नारकीय जीवन जिएंगे, कोई पारिवारिक परंपरा नहीं रहेगी, कोई अच्छे कार्य नहीं रहेंगे। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने बहुत से कारण दे दिए। एक कारण अर्जुन ने दिया, क्या आनंद आएगा, कृष्ण कोई नहीं होंगे, अरे हम जीत कर जाएंगे तो कोई स्वागत करने वाले को तो हमने खुद ही मार दिया सबको, तो आनंद नहीं आएगा। दूसरा वो कहते पाप लगेगा श्री कृष्ण हमें, अगर हम ऐसा घृणित कार्य करेंगे केवल भूमि के लिए, हम अपने गुरु को मारेंगे, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पाप लगेगा। और फिर अर्जुन कहते हैं कि क्यों ये सब करना है, देखिए पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और फिर हम लोग अच्छे लोग हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई कारण देकर अर्जुन ये अध्याय का अंत करते हैं इस अध्याय का, और फिर इसके आधार पर दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तो पहले अध्याय का ये सार यहां पर है कि पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन अलग अलग कारण दे रहा है, और बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ देख चुके हैं इस पहले अध्याय में। तो ये जो पहला अध्याय हमारा यहाँ हम लोगों ने अभी चर्चा की, तो इसको संक्षेप में, सार में हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसा इसका सार है संक्षेप में। तो प्रारंभ में प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह अध्याय है। प्रश्न में ही हम मानसिकता, गलत मानसिकता को देखते हैं, और फिर जैसे जैसे अध्याय बढ़ता जाता है हम दुर्योधन की कूटनीति को देखते हैं, फिर हम पांडवों की विजय के चिन्ह देख लेते हैं, और उसके बाद हम इस अध्याय में भगवान का भक्त वत्सल रूप देख लेते हैं, और फिर अर्जुन की करुणा के आधार पर दिए गए कारण देख लेते हैं। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। कल हम लोग दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसमें क्या चर्चा होगी, जिसमें चर्चा होगी कि अब अर्जुन जब थक गया, हार गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उस समय श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया, ये हम कल चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका साथ में बने रहने के लिए, और आप में से किसी के कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आशा करते हैं कि आज के इस सेशन में आपको कुछ थोड़ा बहुत भगवद गीता के विषय में बता पाए, भगवद गीता का क्या विषय है, तो और आगे भी हम लोग इसी में साथ में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप में से कई लोगों को देख रहे हैं जो अलग अलग स्थानों पर हैं, और सुबह में भी आप लोग कई जुड़ते हैं, सो धन्यवाद। ओके, सो यहाँ कुछ हैंड्स ऊपर हैं, रेज्ड हैं, शायद प्रश्न है। नम्रता, क्या प्रश्न है आपका?
प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण तो मतलब परमात्मा है, ईश्वर है, जो खुद
ये कहीं और, एक सेकंड रुकिए। ओके नम्रता, आप अभी बोल सकते हैं।
प्रणाम गुरु जी।
हरे कृष्ण।
गुरु जी, मेरे मन में हमेशा ये सवाल होता है कि श्री कृष्ण तो स्वयं ईश्वर हैं, जो महाज्ञानी है, लेकिन फिर भी जब वो कृष्ण रूप धारण किए थे, कृष्ण अवतार में आए थे, तो क्या वो शिक्षा ग्रहण किए थे किसी गुरु से? और अगर किए थे तो उनके गुरु का क्या नाम था?
बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू नम्रता। सो श्री कृष्ण निश्चित भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारा ज्ञान उनसे ही आता है। लेकिन जब वो इस जगत में आते हैं तो एक बात उन्होंने भगवद गीता में बड़ी अच्छी कही है, हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, कि वो ये कहते हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव तरोजना, कि जैसे बड़े बड़े प्रभावी लोग, महान लोग कार्य करते हैं, बाकी लोग भी वही करते हैं, और इसीलिए अर्जुन मुझे भी कार्य करना पड़ता है। वैसे वो कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और वही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। केवल 64 दिन में सारी 64 कलाएं सीख ली उन्होंने। सीख क्या ली, वो तो उनको आता ही था, लेकिन केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस कार्य को किया। तो उनके गुरु का नाम सांदीपनी मुनि है, जिनका आश्रम भी बहुत अभी भी लोग वहां जाते हैं। सो और साथ साथ ये केवल एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किया। तो भगवान ऐसा करते हैं, जब आते हैं तो किसी जीव को अपना माता पिता बनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनसे श्रेष्ठ हो गए, वो भी भक्ति होते हैं, जैसे यशोदा और नंद महाराज, वो तो श्री कृष्ण के भक्त हैं। इनफैक्ट श्री कृष्ण ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था। एक प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, नंद किम अक्रोध ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम, कि क्या किया था नंद महाराज ने, तो उत्तर में बताया कि उन्होंने कुछ तपस्या करके भगवान से मांगा था। तो इसलिए ये उनके गुरु का, वो उन्होंने ज्ञान लिया केवल एक हम सबके लिए एक आचरण रखने के लिए, उदाहरण रखने के लिए, कि हम कहीं अपने आप भटक ना जाए। ठीक है, हरीश प्रभु आपका कुछ प्रश्न है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि हम हरि नाम का जप करते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक तो पता है कि भाई हरि नाम एव हरि नाम एव हरि नाम एव नाम एव केवलम, लेकिन जो हम श्लोक का पारायण करते हैं भगवत गीता का, तो 750 श्लोकों का पारायण क्यों करते हैं, उसके पीछे का मतलब क्या है रीजन प्रभु जी?
उसके पीछे का रीजन ये है कि भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है दो बातें। पहली ये कि अगर आप अपनी वाणी की तपस्या करना चाहते हो तो स्वाध्याय व्यसनम, मतलब सतत भगवान के द्वारा कहे गए या शास्त्रों का उच्चारण होना चाहिए। और दूसरा चीज, भगवान अंतिम अध्याय में बताते हैं कि जो इस भगवद गीता को बार बार कहता है या समझाता है अन्यों को, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। हमें थोड़ा सा जल्दी जाना होगा क्योंकि अन्य भी क्लास होगी। समृद्धि।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया है कि पहले का जो अध्याय है वो कर्म योग के बारे में बताया गया है, और लास्ट वाला जो अध्याय है लास्ट में वो ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, तो मध्य युग में भक्ति योग के बारे में बताया गया, तो क्यों भक्ति योग को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है?
थैंक यू समृद्धि, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति योग को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया और कर्म योग और ज्ञान योग को क्यों नहीं? रामायण के प्रारंभ में, ब्रह्म पुराण में जो रामायण दी गई, जिसको अध्यात्म रामायण कहते हैं, उसके प्रारंभ में शिवजी और पार्वती जी का एक संवाद है, जिसमें शिवजी से पार्वती जी प्रश्न करती हैं रामचंद्र जी के विषय में, और उस प्रश्न को करते हुए वो एक बात कहती हैं। वो कहती हैं भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय नान्यतत् साधनमस्ति किंचित्। तो वो कहती हैं कि ये प्रसिद्ध है जगत में और सब जानते हैं कि भक्ति ही एक मार्ग है इस भवसागर को पार करने का। भक्ति प्रसिद्धम भव मोक्षणायम, और न अन्य तत् साधनम अस्ति किंचित, और कोई साधन नहीं है। तो शास्त्रों में आचार्यों ने समझाया है, गुरुजनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने स्वयं भगवान की वाणी के द्वारा, कि अन्य मार्ग ये भक्ति को सहयोग करने के लिए है। वैसे भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य मार्ग केवल भक्ति तक आने के लिए है। भगवद गीता में भी भगवान ने इसी बात को कहा, उन्होंने छठे अध्याय में कई योगों को कह दिया, और उसके बाद वो कहते हैं वो छठे अध्याय में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि बहुत प्रकार के योगी हैं, कर्म योगी हैं, हठ योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, राज योगी हैं, भगवान कहते हैं सब प्रकार के योगी हैं, लेकिन योगी नाम अपि सर्वेशां, इन सारे योगियों में से कौन मुझे अच्छा लगता है या कौन सबसे श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति में लगा है। तो क्योंकि भगवान भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, शास्त्र भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, सारे आचार्यगण भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए भक्ति योग को बहुत महत्व दिया जाता है। थैंक यू। वंदना, आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धृतराष्ट्र क्यों लास्ट मोमेंट में उसका संशय वो आशा जागृत हुआ, किंतु लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हो सकता, ओनली युद्ध ही हो सकता है।
ओके, लास्ट मोमेंट में ही उसका आशा और संशय क्यों जागृत हुआ? आखिरी में पहले तो कर लेता तो शायद कुछ हो जाता। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे जागृत हुआ, लेकिन जो आशा की किरण है ना, ये लास्ट मोमेंट तक बनी रहती, ये दिखाने के लिए। वो तो पहले से सोच रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर भी उसकी वो आशा नहीं गई, तो ये दिखाने के लिए है कि अगर हमने जीवन में सही मार्ग नहीं अपनाया तो मरते मरते भी हमारी आशा बनी रहेगी कि थोड़ा सा मिल जाए। मर रहे हैं, कोई आकर बोलेगा पता है वो शेयर में पैसा लगाओ बहुत बड़े, अरे जल्दी लगा दो पैसे, वो मरते मरते भी वही रहेगा उसका। तो इसीलिए ये जो आशा है और संशय है, ये अंत तक बना रहेगा अगर हम भगवद गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि उसको पहले संशय नहीं था और पहले आशा नहीं थी, जीवन भर उसकी आशा थी, लेकिन अंत समय तक भी उसने छोड़ा नहीं, ये दिखाया गया। ठीक है, ओके, समय है थोड़ा, हम लोग ले सकते हैं। सनी,
राधे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण, बताइए
गुरु जी। मेरा क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन मैं एक ही दो पूछूंगा। पहले तो एक फीडबैक देना चाहूंगा गुरु जी कि जब आप प्रवचन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम लोग पूरे सेशन में एक्टिव रहें और जो भी बातें बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं, हम जैसे अभी मेरे साथ हुआ है, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, अपने ऊपर कैसे अप्लाई करना ये भी सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है कि यहाँ जाना है ऐसे करना है, इधर उधर दिमाग भटक रहा है। तो ऐसे कुछ सेशन के स्टार्टिंग में एक्टिव किया जाए कि पूरा फोकस एक ही जगह बना रहे स्क्रीन पर और आपकी बातों पर, और जिसे हम जीवन में उतार सके।
कल से, मेरा कल से, कल ये से है, हम एक जादू की छड़ी लेकर बैठेंगे और सेशन के पहले एक जादू की छड़ी ऐसे घुमा देंगे सब लोगों को, हो जाएगा। यस, आपने अच्छा सजेशन दिया है, निश्चित इसको कुछ हम लोग करेंगे, निश्चित कि ऐसा कुछ आपको पहले से दे दिया जाए, कुछ ऐसा जिससे आप अटेंशन में रहो। यस, थैंक यू। अनदर, कोई और सजेशन?
गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे के साथ क्यों बुरा हो रहा है और बुरे के साथ क्यों अच्छा होता है। मतलब हम किसी मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या बहुत ज्यादा उसके पास जाते हैं, जैसे घर में है, रिलेशन में है, हम लोग उसके जिस मनुष्य के और जितने भी करीब जाते हैं वो हमसे उतना ही क्यों दूर जाता है।
ओके, सो प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, या हमारे जो प्रियजन होते हैं उनसे हम प्रेम करते हैं तो क्यों अलग चले जाते हैं। सो अभी हमने, सनी आप पता नहीं थे कि नहीं, गुरुवार को एक दो दिन पहले, परसों, हाँ परसों, दो दिन पहले हमने एक सेशन किया था, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और उसमें बड़े विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ, हमने कई उदाहरणों के साथ बताया था। और अगर आपने वो सेशन, वो मंत्र ऑफ लाइफ का आखिरी सेशन था, अगर किसी तरह से आपने वो अटेंड नहीं किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, आप प्लीज उसको देखिए। वो 1 घंटे का सेशन है जिसमें हमने बड़े विस्तार से यही प्रश्न का उत्तर दिया है कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और हमारे हिसाब से आप तो सुबह भी आते हो शायद, या नहीं आते? वैसे आप में से जो लोग मेडिटेशन सेशन में नहीं आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग रोज 6:30 बजे एक मेडिटेशन सेशन कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स के लिए। सो आप में से जो लोग नहीं हैं वो लोग ज्वाइन करें। जो लोग हैं उनको बहुत लाभ मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम दूसरे कोई प्रश्न लें, एक आध कोई स्टूडेंट जो सुबह आते हैं मेडिटेशन सेशन में, कृपया हाथ ऊपर करके दे कैन स्पीक, बता सकते हैं कि क्या लाभ हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नम्रता, आप आते हो ना सुबह? यस
जी गुरुजी, मैं हर रोज अटेंड करती हूँ। सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मैं, मेरा जो दिन का, मतलब पहले ये था कि शेड्यूल तो करती थी स्टडी का, लेकिन उतना कर नहीं पाती थी एफिशिएंटली। अब थोड़ा बहुत अगर प्रेशर भी रहता है कि एग्जामिनेशन नजदीक है और कैसे हैंडल करें सब कुछ चीजें, तो वो भी जैसे एक कृष्ण के लिए जो भावना है, जो प्रेम है, वो मुझे ये ऐसा लगता है कि आश्वासन दे रही है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं साथ दूंगा, ऐसा लगता है कि अंदर से है। तो वो चीजें मैं बहुत आसानी से हैंडल कर लेती हूँ और माइंड को कूल रख के बहुत एफिशिएंटली स्टडी भी कर ले रही हूँ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो किसी भी थ्रू हो, चाहे अगर मैं यूट्यूब पे कोई चीजें खोली और डायरेक्ट वहां पे कोई टीचर अपना लेक्चर दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली वही टॉपिक्स मुझे जरूरत थी, तो मुझे बहुत ज्यादा इससे गाइडेंस मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, बट ये हो रहा है मेरे साथ।
थैंक यू नम्रता, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुनकर। सो ये सब स्टूडेंट्स रोज सुबह आते हैं 6:30 बजे और साथ में हम लोग सब मेडिटेशन करते हैं और काफी समय से, कुछ दिनों से हो रहा है, तो आप सब भी, अन्य स्टूडेंट्स भी लाभ ले सकते हैं। एक 3-4 हाथ हम और देख रहे हैं, लेकिन समय बहुत हो रहा है। सो आप लोग अपनी जो स्टूडेंट्स के लिए जो अटेंडेंस है, कृपया उस लिंक को क्लिक करके अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को अटेंडेंस देना है। जो बाहर के लोग हैं, अन्य लोग, उनके लिए अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज गिव योर अटेंडेंस। आई थिंक एक आखिरी हम लेंगे प्रश्न, क्योंकि उसके बाद फिर रुकना होगा। के दीपक सिंह,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में आ रही है। मैं मेडिटेशन भी अटेंड कर रहा हूँ और अपने आसपास नियर डियर, अपने रिलेशन में, अपने ऑफिस में, मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग भी भगवद गीता पढ़ा करें और इसको अपने जीवन में उतारें। तो उनके हाव भाव और भाव भंगिमा चेहरे के एक्सप्रेशन में देख के लगता है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। तो हम कैसे बता पाए उनको कि भगवद गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, और मतलब हम अपने शब्दों में कैसे कह पाए उनको कि, ये मेरा प्रश्न है प्रभु जी, कैसे एक्सप्लेन कर पाए।
हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है। वैसे आप सुबह ज्वाइन करते हो, आप सुबह का सेशन मेडिटेशन?
जी प्रभु जी, मैं करता हूँ सुबह।
कैसा लग रहा है आपको सुबह का सेशन?
मेरी एकाग्रता बढ़ रही है प्रभु जी धीरे धीरे। मुझे क्रोध बहुत आता था, मैंने कंट्रोल किया, और मुझे चिड़चिड़ापन भी कुछ होता था, तो वो भी कंट्रोल में आ रहा है। मैं अपने नेचर में ये प्रभु जी फील कर पा रहा हूँ धीरे धीरे।
बहुत अच्छा। सो यस, जो आपका प्रश्न था कि कैसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग चाहते हैं वो करें, बताते हैं उनको, फिर भी लोग ऐसे मुंह बना लेते हैं कि अभी। सो क्यों ऐसा होता है? इसका कारण एक है जो भगवद गीता में ही भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वो कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति ये जान पाता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरण में वो आता है। तो इसीलिए आप ये जान लीजिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें लोगों को भगवद गीता देते रहना और उनके अंदर उसको पढ़ने की भावना, उसको पालन करने की भावना, वो कैसे आएगी वो कृष्ण जाने, हमें हमारा कर्तव्य करना है। सो हम प्रयास करते रहें, हो सकता है कि आज वो व्यक्ति मना करे, कल मन करे, और अचानक उसके साथ कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि वो आकर आपसे पूछे कि भाई आप कुछ बता रहे थे, बताओ मुझे भगवद्गीता के बारे में। तो इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ये समय ऐसा ही है कि लोग बहुत ज्यादा इसमें रुचि नहीं लेते हैं, और इसलिए हमें जितना हो सके कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में, गीता के विषय में जरूर अन्यों को बताना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि मेडिटेशन के द्वारा उनको बहुत अच्छा लग रहा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई है, और पढ़ाई में 2 घंटे से बिना ब्रेक के वो 5-6 घंटे बिना ब्रेक के आराम से पढ़ पा रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू गरिमा आपके कमेंट्स के लिए। ओके, सो क्षमा चाहेंगे, अभी 8:30 हुआ है और अभी बंद करना होगा क्योंकि अन्य भी कार्य हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके 1-2-3 कोई प्रश्न रह गए हैं, कल हम और करेंगे। तो कल भी आप ठीक 7 बजे, आपको सूचना देने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक 7 बजे आपसे मिलेंगे 2 अध्याय की चर्चा, और ऐसे करते करते 18 अध्याय पूरे होने वाले हैं भगवद्गीता के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब जुड़े, थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करेंगे भगवान श्री कृष्ण से कि भगवद्गीता का ज्ञान जो कल से प्रारंभ होने वाला है, जो कृष्ण देंगे, उसको भी हम इसी तरह अपने जीवन में समझ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।